नमस्कार।
धान की खेती रोपाई विधि से की जाती है। देखिए, यद्यपि रोपाई विधि से धान लगाने से उपज में वृद्धि होती है, परंतु इसकी खेती में जो है श्रमिकों की वो समस्या बहुत रहती है। जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा श्रमिक जो हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो धान की रोपाई हाथ द्वारा करने के लिए प्रति हेक्टर लगभग 30 से 40 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, और पौधों से जो पौधों की दूरी है वो एक सार नहीं रह पाती, क्योंकि वो इस बात पर निर्धारित रहती है कि जो मजदूर है वो जो है कितनी दूरी पर जो है पौधे का रोपण कर रहा है, और विभिन्न जो मजदूर हैं वो एक सार जो है पौधों का रोपण नहीं कर पाते हैं, तो जो पौधों से पौधे की दूरी है वो एक सार नहीं रह पाती है। इसी कारण जो है खरपतवार नियंत्रण भी जो है संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कतारों में रोपाई के लिए यंत्रों यानी रोपाई यंत्र का विकास हुआ है, जो कि इन इन प्रकार का है जो कि अभी हमें आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बारी आती है हस्तचालित रोपाई यंत्र। धान रोपाई यंत्र में हस्तचालित रोपाई यंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये प्राय 4 से 5 कतारों वाली मशीन है। इस मशीन में मैट वाली नर्सरी यानी पौध जो है वो प्रयोग की जाती है। इसको एक विशेष तरीके या विधि से उगाया जाता है। इस मशीन में लकड़ी का तल्ला यानी स्किड मुख्य फ्रेम, पाइप का जो फ्रेम है मुख्य फ्रेम, पौधे ट्रे, पौध प्रदर्शक यानी नर्सरी इंडेक्सिंग प्रणाली जो है, फिंगर असेंबली और हैंडल मुख्य भाग जो है इस यंत्र के होते हैं। लकड़ी का तल्ला इसलिए दिया जाता है कि मशीन पानी में तैरती अवस्था में रहे और चालक को कम से कम शक्ति लगाने की जो है आवश्यकता पड़े। चलिए इसकी कार्य प्रणाली और इसके बारे में और बात करते हैं। इसकी पौधे ट्रे बक्से यानी में पौध मैट के रूप में रखी जाती है, और जब चालक हैंडल को नीचे की ओर दबाता है तो पौध लगाने वाली फिंगर जो है पौध फीड करने वाली फ्रेम की झिरी में आती है और 3 से 4 पौधों को मैट में से तोड़कर निकाल लेती है। अब इस हैंडल को आगे दबाया जाता है तो रोपाई प्रणाली की फिंगर कद्दू किए गए खेत में धंस जाती है। पौध रोपाई की गहराई पर नियंत्रण रखने के लिए हैंडल के लिए रुकावट दी गई है। इनसे गहराई कम या अधिक की जा सकती है। जब चालक मशीन के हैंडल को अपनी ओर खींचता है और आगे की ओर चलता है, तब फिंगर वाली पौध जो है भूमि में रह जाती है। चालक मशीन को आगे तब तक खींचता है जब तक कतार में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक मशीन ना सरक जाए। भूमि में पौध प्राय 70 से 75 डिग्री के कोण पर लगती है। इसी बीच मशीन की पौध प्रदर्शक प्रणाली कार्य करती है और फिर मैट फ्रेम की झिरी के सामने आ जाती है। हैंडल के दबाने पर फिंगर से 3-4 पौधे आ जाते हैं और रोपाई होती रहती है। इस मशीन में प्रति गुच्छा पौधों की जो संख्या है और गहराई के नियंत्रण के लिए बड़ा सरल जो है वो प्रावधान दिया गया होता है। ये मशीन बनावट में एकदम सरल यानी सिंपल है और चलाने में बहुत हल्की होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। इसके द्वारा धान की रोपाई में लगने वाला समय कम किया जा सकता है और जो मजदूरों की संख्या भी जो है कम करना संभव है, क्योंकि ये कतारों में एक सार दूरी पर पौधों की रोपाई करती है। इसीलिए धान के खेत में यांत्रिक विधि से निराई करना जो है आसान रहता है। इसकी सहायता से कतार की दूरी 20 जो सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। ये प्रति गुच्छा 3 से 5 पौध और 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई कर सकती है। इसके अतिरिक्त 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर खड़े पानी में इसको चलाया जा सकता है। इसके द्वारा किसान भाइयों 25 से 30 गुच्छे प्रति वर्ग मीटर और 3 से 4 पौधे प्रति गुच्छा रोपाई संभव है। प्रतिदिन 0.5 से 0.6 एकड़ की रोपाई जो है वो संभव है। कुछ मशीनों में मैट वाली नर्सरी प्रयोग होती है, जबकि कुछ मशीनें जड़ धुली हुई पौध की रोपाई के लिए बनाई गई। तो ये तो थी बात हस्तचालित रोपाई यंत्र के बारे में। आइए अब बारी आती है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक धान रोपाई यंत्र की। ये 2 से 10 कतारों के आकार में जो है विकसित की गई है। कुछ मशीनों में मैट वाली नर्सरी प्रयोग होती है, जबकि कुछ मशीनें जड़ धुली हुई पौध की रोपाई के लिए बनाई गई है। कि यद्यपि स्वचालित रोपाई मशीन की कार्य क्षमता कतारों की संख्या और पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, फिर भी 1 6 लाइन वाली रोपाई मशीन में लगभग 2 से 2.25 हेक्टेयर धान की रोपाई की जा सकती है। स्वचालित मशीन के जो हैं ये मुख्य भाग होते हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले तैरने वाला लकड़ी का जो है तल्ला, ये इसका एक मुख्य भाग है, और दूसरे मुख्य फ्रेम, तीसरे इंजन, चौथा शक्ति संचारण प्रणाली, पांचवा रोपाई प्रणाली, और छठा जो है सबसे अंत में पहिए। तो ये इसके मुख्य अंग हैं। चलिए अब इनका विस्तार से जो है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो तैरने वाला लकड़ी का तल्ला, इसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, लकड़ी के तल्ले का मुख्य कार्य जो है मशीन के शेष भागों को सहारा देना और मशीन को कद्दू किए हुए खेत में तैरती अवस्था में समतल रखना है और बिना किसी कठिनाई के इंजन की सहायता से चलाने में सहायता प्रदान करना है, जो इस लकड़ी के तल्ले का मुख्य कार्य है। इसके पीछे लगी हुई लकड़ी पौध को भूमि में रोपने के पश्चात मिट्टी को इसके पास से लाती है, जो कि पौध को सहारा देती है और इसे पानी में तैरने नहीं देती। ये लकड़ियां मशीन की कतारों की संख्या के अनुसार लगी होती हैं। लकड़ी के तल्ले पर पाइप और एंगल का फ्रेम लगा होता है। पाइप के फ्रेम पर इंजन लगा होता है और चालक के बैठने का जो है वो इसमें जो है प्रावधान होता है, जबकि एंगल के फ्रेम पर एक निर्धारित दूरी पर पौध के बक्से लगे होते हैं। इनमें रोपाई के लिए पौध रखी जाती है। तल्ले के नीचे रबड़ के पहिए लगाने की व्यवस्था होती है, ताकि मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनको लगाया जा सके। अब बात करते हैं मुख्य फ्रेम की। मुख्य फ्रेम पाइपों को वेल्ड करके लगी होती है, जो कि इंजन, गियरबॉक्स, शक्ति संचारण प्रणाली और रोपाई प्रणाली को सहारा प्रदान करती है। इसको नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा जा सकता है। तो ये तो थी बात मुख्य फ्रेम की। अब बात करते हैं इंजन की। स्वचालित मशीनों में जो है प्रायः 3.8 से 5 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर के डीजल इंजनों का जो है प्रयोग किया जाता है। ये मशीन खेत में चलाने के साथ साथ रोपाई प्रणाली को भी शक्ति प्रदान जो है करता है। अब शक्ति संचारण प्रणाली जो है इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। देखिए किसान भाइयों, इंजन से शक्ति का संचारण बेल्ट पुली की सहायता से मुख्य क्लच को होता है। मुख्य क्लच से शक्ति गियर बॉक्स में पहुंचती है और गियर बॉक्स में शक्ति 2 भागों में जो है बंट जाती है। एक भाग बलपूर्वक खींचने वाले पहिए, जिसे कि अंग्रेजी में हम लग्ड व्हील कहते हैं, जो पूरी शक्ति का जो एक भाग है वो लग्ड व्हील यानी खींचने वाले पहिए को जाता है और इनकी को विभिन्न गियरों द्वारा कम करके इस पहिए भेजा जाता है। इस पहिए द्वारा खिंचाव शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। ये मशीन को कद्दू किए हुए खेतों में चलाता है। गियरबॉक्स की सहायता से मशीन को तीन गतियां जो हैं वो उपलब्ध होती हैं। अलग अलग गियर लेवल जो हैं दिए जाते हैं जिससे आप इंजन की जो शक्ति है उसको तीन अलग अलग गतियों के अनुसार जो है उसे चला सकते हैं। गियरबॉक्स की सहायता से आवश्यकता और कार्य अनुसार जो है मशीन की गति का चुनाव किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो शक्ति का दूसरा भाग है वो रोपाई प्रणाली को जाता है। इससे फिंगर असेंबली और पॉड ट्रे को भी शक्ति मिलती है। रोपाई प्रणाली के लिए गियरबॉक्स से चार गतियां उपलब्ध होती हैं जिनसे कतार में पौध से पौध की दूरी 10, 13.5, 16.5 और 20 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। मशीन की सभी चेन और गरारियां पूर्ण रूप से ढकी रहती हैं ताकि इसमें पानी और गारा यानी मिट्टी न जाए। अच्छा, रोपाई प्रणाली एक लीवर की सहायता से शक्ति प्राप्त होने पर ही कार्य करती है। शक्ति संचारण प्रणाली का निर्माण इस प्रकार किया होता है कि इसमें कार्य करते समय कोई कंपन न हो। चलिए अब बात आती है रोपाई प्रणाली की। किसान भाइयों, इस प्रणाली का मुख्य कारण धान की पौध की खेत में ठीक ढंग से जो है रोपाई करना है। इसमें फिंगर बार असेंबली लगी होती है जो कि गियर बॉक्स द्वारा प्राप्त शक्ति से घूमती है। पौध उठाने वाली कार्बन स्टील की बनी फिंगर्स 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के बार पर लगी होती है। फिंगर बार के दो सेट बेयरिंगों पर लगे होते हैं। ये एक साइड में इस प्रकार से चलते हैं कि पौध वाले बक्से में फिंगर की जो पूरी तरह जा सके, जो पौध वाला बक्सा है उसमें फिंगर पूरी तरह जा सके और निकल सके, परंतु लौटते समय बक्से से दूर रहे। रोपाई प्रणाली निश्चित समय के अंतर से धान की पौध को बक्से में से निकालती है और इसमें एक फीड गियर लगा हुआ होता है जो कि असेंबली को दोनों ओर खिसकाता या चलाता है। प्रत्येक बार फिंगर्स बक्सों में से 3 से 4 पौध ले आती है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में तारों की जाली और ब्रश भी लगे होते हैं जो कि अधिक पौधों और चिपके हुए पौधों को साथ नहीं जाने देते और प्रति फिंगर लगभग एक सार पौधों की रुपाई होती है और अधिक पौध जो है बेकार नहीं जाती। इसके साथ साथ रोपाई प्रणाली में पौध लगाने की गहराई और पौधों की संख्या प्रति गुच्छा नियंत्रण करने और सेट करने का जो है वो प्रावधान भी होता है जिस कारण छोटी या बड़ी पौध की रोपाई करना भी जो है संभव है। इसमें दो मजदूरों के बैठने के लिए प्रावधान होता है ताकि मशीन चलाते समय बक्सों में लगातार पौध रखी जा सके और मशीन के बक्सों में पौध रखने के लिए मशीन को बार बार रोकना ना पड़े। अब बात आती है पहिए की। देखिए, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसे लकड़ी के तल्ले के नीचे दोनों ओर दो रबड़ के पहिए लगाते हैं। इसके साथ साथ ड्राइव व्हील भी रबड़ के टायर वाला लगा होता है। मशीन को इंजन से प्राप्त शक्ति से चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से ले जाया जा सकता है। और किसान भाइयों, इसके चलने की गति 2 से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये तो थे इसके मुख्य भाग जिनका हमने आपको विस्तृत रूप में जानकारी, जिन भागों की हमने आपको दी। चलिए अब धान की रुपाई जो यंत्र है इसकी कार्य प्रणाली का भी हम आपको ज्ञान देते हैं। धान की पौध मशीन के सभी बक्सों में जो है पौध को रखी जाती है और इसमें खिंचाव उत्पन्न करने वाला जो पहिया लगा दिया जाता है और तल्ले से रबड़ के पहिए निकाल दिए जाते हैं। इंजन को चालू करके जब मुख्य क्लच द्वारा ड्राइव व्हील को शक्ति से जोड़ा जाता है तो मशीन आगे की ओर चलने लगती है। गति का चुनाव इंजन पर आने वाले भार के अनुसार किया जाता है। रोपाई करने के लिए लीवर की सहायता से रोपाई प्रणाली को इंजन की शक्ति से जोड़ दिया जाता है और ये कार्य करना आरंभ कर देती है। इसकी गति का चुनाव कतार में पौध से पौध की दूरी के अनुसार किया जाता है। फिंगर असेंबली की प्रत्येक फिंगर बॉक्सों में से 3 से 4 पौधे उठाती है और भूमि में लगा देती है। मशीन का लकड़ी का तल्ला इसको पानी पर चलाने और तैरती अवस्था में रखता है और ये मशीन के शेष भागों को सहारा भी प्रदान करता है। देखिए, मशीन द्वारा कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। अब बताएं हम आपको कि धान रोपाई की मशीन से न केवल शीघ्रता से बल्कि कम परिश्रम और आसानी से व्यवस्थित रूप से धान की पौध की रोपाई की जा सकती है। तो ये तो थी बात धान की रोपाई यंत्र के बारे में, जिससे आप धान रोपण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गन्ना रोपण यंत्र की। देखिए किसान भाइयों, गन्ने की बुआई प्रायः प्रचलित विधि से ही की जाती रही है। इसमें लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की खुड़ देसी हल की सहायता से बनाई जाती है और इन खुड़ों में पहले हाथ से खाद डाली जाती है और फिर गन्ने की पोरियां पट डाल दी जाती हैं। इनको मिट्टी से ढकने के लिए इनकी बगल में अतिरिक्त खुड हल की सहायता से बना दी जाती है। फिर खेत में सुहागा जो है फेर दिया जाता है। इस विधि से प्रति हेक्टर 1 बैलों की जोड़ी और 24-25 जो है मनुष्यों की आवश्यकता जो है पड़ती है। इसलिए कम व्यय और उचित रूप से इस कार्य को करने के लिए रोपण यंत्रों का जो है विकास किया गया है। तो रोपण यंत्र का मुख्य कार्य जो है वो हम आपको बता देते हैं। उसके मुख्य कारण है खुड बनाना, गन्ने की पोरी यानी सेट को खुड में डालना, खाद को माप कर डालना और आवश्यकता अनुसार कीटनाशी दवाई लगाकर इनको मिट्टी से ढककर दबाना है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं रोपण यंत्रों की। जो 2 प्रकार हम आपको बता रहे हैं वो ये हैं किसान भाइयों। सबसे पहली बात करते हैं बैल चालित रोपण यंत्र की। देखिए, इस यंत्र में आगे की गाड़ी जो लोहे की बनी होती है नाली बनाने वाले उपकरण यानी फाला से जुड़ी होती है। आगे की गाड़ी पर एक सीट गन्ने का बीज डालने वाले के लिए होती है। इसके दोनों ओर बीज के लिए 2 बक्से लगे होते हैं। फाला जो नाली बनाता है उसके साथ जो है एक पतला ना गन्ने की पोरियां नाली में डालने के लिए लगा होता है और एक खाद वितरक भी दिया होता है जो आवश्यकता अनुसार खाद डालता है। ये यंत्र 1 बैलों की जोड़ी और 3 मनुष्यों द्वारा जो है चलाया जाता है। खाद डालना, बीज बोना और नालियों को ढक कर खेत को एक सार करना, ये तीनों कार्य एक ही बार में हो जाते हैं इस यंत्र द्वारा। देखिए, बैल चालित रोपण यंत्र द्वारा बोई गई गन्ने की फसल एक सार उगती यानी उठती है, क्योंकि इसमें बीज और खाद जो है बराबर और यथाक्रम यानी समान रूप से डलते हैं, जो कि प्रचलित बिजाई में संभव नहीं है। इसकी सहायता से प्रतिदिन 0.75 से 0.9 हेक्टर गन्ने की बुआई की जा सकती है और इससे गन्ना बोना सस्ता, शीघ्र और आसान भी होता है। चलिए, ये तो थी बात बैल चालित गन्ना रोपण यंत्र की। अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित गन्ना रोपण यंत्र की। किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित रोपण यंत्र में गन्ने की बुआई और कीटनाशी दवाई लगाने की व्यवस्था भी होती है। ये 2 कतारी मशीन होती है जो कि ट्रैक्टर की लिफ्ट के साथ लगाकर चलाई जाती है और इसके जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले बात आती है मुख्य फ्रेम की, फिर फिर खुद बनाने वाले फाले यानी दोहरी मोल्ड बोर्ड बॉटम की, तीसरे पहिए, फिर 3 पॉइंट हिच, फिर बीज का बक्सा और बीज डालने वाले रोटर, उसके बाद खाद के बक्से, कीटनाशी टैंक और नियंत्रण लीवर, मजदूरों के लिए सीट और खाद की शाफ्ट की चेन और गरारी, और अंत में मिट्टी डालने वाले साधन यानी डिफ्लेक्टर की। तो ये तो ट्रैक्टर चालित गन्ना रोपण मशीन के अंग हैं। देखिए किसान भाइयों, इस रोपण यंत्र द्वारा गन्ने की पूरियों यानी सेट को कतारों में उचित दूरी और गहराई पर बोया जा सकता है। इसमें एंगल आयरन की फ्रेम पर 2 खूड बनाने वाले फाले लगे होते हैं, जिनको 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, ये फाल 10 से 20 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना सकते हैं। फ्रेम पर गन्ने के बीज के लिए बक्सा लगा होता है। इसमें विशेष लंबाई की पोरियां डाली जाती हैं। 2 खाद के बक्से और बीज गिराने वाले रोटर और ये वॉल्व युक्त कीटनाशी टैंक इसके फ्रेम पर जो है लगा होता है। फ्रेम के दोनों ओर लोहे के पहिए लगे होते हैं। एक पहिया चेन गरारी की सहायता से बीज डालने वाले रोटर और खाद मापने वाली प्रणाली को चलाता है। इसकी सहायता से उचित दर से गन्ने का बीज और खाद बोया जा सकता है। रोपण यंत्र के फ्रेम पर 2 मजदूरों के बैठने के लिए सीटें लगी होती हैं, ताकि वे मशीन को खेत में चलाते समय बीज रोटरों में लगातार गन्ने की पोरियां जो है डालते रहें। हम आपको बता दें कि इस मशीन द्वारा प्रतिदिन 4 से 5 मजदूरों की सहायता से 4 से 5 हेक्टर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई की जा सकती है। इसका हर प्रकार की भूमि में जो है प्रयोग किया जा सकता है, और समय और जो है पैसे भी बहुत बचाए जा सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है ट्रैक्टर चालित गन्ना रोपण यंत्र के बारे में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक छिड़काव यानी बुरकाव यंत्र की। भूमि से जो पौधों को मिलने वाले पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश की मात्रा बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक दिया जाता है, ताकि फसल का अधिक उत्पादन हो और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे। रासायनिक उर्वरकों का एक भाग तो फसल की बुआई से पहले छिड़का या बुरका दिया जाता है, अथवा बिजाई के समय ड्रिल मशीन द्वारा लगाया जाता है, जबकि शेष भाग को फसल अंकुरण के पश्चात पानी लगाने के समय दिया जाता है। बिजाई पश्चात दी जाने वाली इस भाग को 2 से 3 बार में दिया जाता है, ताकि फसल को खाद के अधिक होने से कोई हानि ना हो। ड्रिल मशीन द्वारा बुआई के समय खाद लगाने के अतिरिक्त फसल में दिए जाने वाले जो उर्वरकों के लिए छिड़काव और जो है बुरकाव यंत्रों का प्रयोग होता है। तो ये कौन कौन से यंत्र हैं जिनका कि उर्वरकों के लिए छिड़काव और बुरकाव यंत्रों के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये हम आपको बता दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हस्तचालित उर्वरक छिड़काव यंत्र की। किसान भाइयों, इस यंत्र में उर्वरक डालने के लिए 20 गेज की काली या सफेद चद्दर का बना बॉक्स होता है। इसमें खाद को हिलाने के लिए एक एजिटेटर लगा होता है। बॉक्स के नीचे एक आयताकार छेद होता है, जिसमें से उर्वरक निकलकर एक घूमने वाले पट यानी डिस्क पर गिरता है। इस पट पर 90 डिग्री के कोण पर ब्लेड लगे होते हैं। इस पट को हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है। पट की गति को गियर सेट की सहायता से हैंडल की गति से 8 गुना रखा जाता है। उर्वरक की मात्रा एक झिरीदार पत्ती से कम या अधिक खोलने से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस पत्ती पर 3 निशान लगे होते हैं, जिनके द्वारा ऐच्छिक दर के अनुसार उर्वरक डाला जा सकता है। पत्ती की 1, 2 या 3 अवस्थाओं पर जो क्रमशः 29, 60 और 80 किलोग्राम उर्वरक प्रति हेक्टर ये यंत्र डालता है। इस पत्ती के नीचे एक और पत्ती होती है, जिससे उर्वरक को अकस्मात कभी भी बंद किया जा सकता है। मशीन को कंधे पर लटकाने के लिए पीटी दी जाती है। इस मशीन द्वारा प्रतिदिन 7 से 8 हेक्टेयर में खाद छिड़की जा सकती है और इसका प्रयोग बीज और खरपतवारी नाशी दवाओं के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है। ये मशीन हल्की होती है किसान भाइयों, इससे एक बार में 3.5 से 4 मीटर चौड़ी पट्टी में खाद डाली जा सकती है। हाथ द्वारा छिड़काव की तुलना में इस मशीन द्वारा अच्छी तरह से एक सार खाद का छिड़काव जो है वो किया जा सकता है। अब इस यंत्र को यानी हस्तचालित उर्वरक छिड़काव यंत्र को प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, विभिन्न निशानों पर उर्वरक छिड़काव यंत्र को चलाते समय जो हमने अभी आपको चलाने के ढंग बताए हैं उनका अनुसरण करें। उर्वरक कम या अधिक करने वाली पत्ती को निशान पर रखने के बाद नट से कस दें और बाद में मत छेड़ें। बक्से में उर्वरक भरते समय उर्वरक कम या अधिक करने वाली पत्ती के नीचे वाली पत्ती बंद हो और चलाते समय केवल इस पत्ती को खोलें। छिड़कने से पहले ही उर्वरकों को बक्से में भरें। अधिक समय तक बक्सों में पड़ी खाद अगर पड़ी रह जाए तो उनमें नमी आ जाएगी और उर्वरक ठीक तरह से छिड़का नहीं जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि छिड़कने से पहले ही उर्वरकों को बक्से में भरा जाए। एक और जो ध्यान देने योग्य बात है वो है, उर्वरक बक्से में भरते समय ये ध्यान रहे कि उर्वरक में ढेले ना हो। यंत्र चलाते समय ये ध्यान रखें कि उर्वरक छिड़कने वाली जो गोलपट लेवल में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो गोलपट जो है लेवल में हो, और चलाते समय ढक्कन जो है वो बंद रखें। चलाते समय साधारण गति से ही चले, यानी कि 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है साधारण गति, उसी से ही आप चलें। हैंडल को आम गति से ही घुमाएं, यानी 35 से 40 चक्कर प्रति मिनट, क्योंकि हैंडल के चक्कर कम या अधिक होने से जो है उर्वरक एक सार छिड़काव पर जो है असर पड़ता है। तो आप हैंडल की गति को जहाँ तक संभव हो सके एक सा ही घुमाएं। एक और ध्यान देने योग्य जो बात है इसके उपयोग में वो है, उर्वरक छिड़कने के पश्चात यंत्र की अच्छी प्रकार से जो है साफ सफाई करके उसे रखें, और इस्तेमाल के बाद उसके बक्से में जो है उर्वरक जो है कभी ना छोड़ें। चलिए, हस्तचालित उर्वरक छिड़काव यंत्र के बाद अब बात आती है ट्रैक्टर चालित उर्वरक छिड़काव यंत्र की। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर पीटीओ चालित उर्वरक छिड़काव यंत्र है जिसको ट्रैक्टर की लिफ्ट के साथ लगाया जाता है। उर्वरक का बॉक्स यानी उल्टे कोण के आकार का होता है। एजिटेटर, उर्वरक फीड पट डिस्क, विकेंद्रीय वितरक जो है डिस्क, घूमती हुई डिस्क, मुख्य फ्रेम, शक्ति संचारण प्रणाली आदि जो है इसके मुख्य भाग हैं। इसका बॉक्स एक उल्टे कोण के रूप में होता है जिसके निचले भाग में उर्वरक को माप कर डालने वाला पट यानी डिस्क लगा होता है। बक्से में उर्वरक को जमने से बचाने के और फीड प्रणाली को लगातार एक सार मात्रा में उर्वरक देने के लिए बक्से में एक एजिटेटर लगा होता है। जब पीटीओ द्वारा फीड प्रणाली को शक्ति मिलती है तो ये एजिटेटर घूमता है और उर्वरक को बक्से में जमने नहीं देता। बक्से के नीचे एक 450 से 500 मिलीमीटर व्यास का जो है पट, जिस पर 25 मिलीमीटर ऊंचे ब्लेड लगे होते हैं, लगी होती है। ये विकेंद्रीय डिस्क 750 से 800 चक्कर प्रति मिनट की गति से ट्रैक्टर की पीटीओ से घूमती है। इसके सभी चलित भाग और बक्सा एक मजबूत फ्रेम पर लगे होते हैं। किसान भाइयों, फ्रेम के दोनों ओर रबड़ के पहिए भी लगे होते हैं। ये छिड़काव यंत्र विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बक्से से खाद फीड पट यानी डिस्क द्वारा एक निर्धारित दर में क्षितिज पर घूमती हुई पट पर डलती है तो ये उर्वरक को 6 से 9 मीटर चौड़ी पट्टी में बिखेरती। इसके द्वारा फीड पट यानी डिस्क को अलग अलग गतियों पर चलाकर 5 से 200 किलोग्राम उर्वरक प्रति हेक्टेयर डाला जा सकता है। इसको बीजों और खरपतवार नाशियों के छिड़काव के लिए भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, उर्वरक छिड़काव यंत्रों की कार्यकुशलता मुख्य रूप से उनकी गति, फसलों की आवश्यकताओं और भूमि की अवस्था पर निर्भर करती है। इनसे अच्छा कार्य करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि खेत में एक सार और ठीक दर से जो है उर्वरक का छिड़काव किया जाए। उर्वरक छिड़काव यंत्र की कार्यकुशलता इन बातों पर जो है निर्भर करती है। सबसे पहले उर्वरक के बक्से में जो है से घूमने वाले पट पर आने वाले उर्वरक की दर, क्योंकि बक्से से उर्वरक की मात्रा का नियंत्रण फीड पट अथवा पट्टी की सहायता से किया जाता है, इसीलिए उचित दर प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक मशीन में इसका कम या अधिक करने का प्रावधान जो है वो होना चाहिए। अब एक और बात हम आपको बता दें कि उर्वरक छिड़काव यंत्र की कार्य करने की जो कार्यकुशलता है वो इस बात पर भी जो है निर्भर करती है कि घूमने वाली विकेंद्रीय पट की गति क्या है। खेत में उर्वरक छिड़काव की दर पट की गति पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। यदि इसकी गति अधिक होगी, यानी जो पट की गति है, छिड़काव की दर जो पट की गति है वो अधिक होगी, तो छिड़काव की पट्टी की चौड़ाई जो है वो अधिक होगी और उर्वरक की मात्रा अथवा दर प्रति हेक्टर कम होगी। ये एक और बात पर भी निर्भर करती है, वो है शक्ति स्रोत यानी ट्रैक्टर आगे चलने की गति। मशीन की आगे चलने की गति भी जो है उर्वरक छिड़काव की दर को प्रभावित करती है। किसान भाइयों, यदि ट्रैक्टर की गति अधिक होगी तो एक सेटिंग पर मशीन द्वारा प्रति हेक्टर कम उर्वरक डलेगा। इसके विपरीत यदि ट्रैक्टर की गति कम होगी तो पट की पूर्व गति एवं बक्से से आने वाले उर्वरक की दर वहीं रहने पर भी खेत में अधिक उर्वरक छिड़का जाए। इसीलिए आवश्यकता अनुसार जो दर और गतियों का चुनाव करके इच्छित दर से आप उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो थी बात ट्रैक्टर चालित उर्वरक छिड़काव यंत्र की।